मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 10 अगस्त 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 यंग फ्रेंड्स का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में लगने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं निशा पुरोहित, आप सिरोही राजस्थान से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, आप विशाखापट्टनम से हैं। राजकुमार कनेरिया, आप ग्वालियर से हैं। हिरपारा अर्जुन रमेश भाई, आप राजकोट गुजरात से हैं। नीलम सिंह इलाहाबाद से हैं। प्रियंका वानखेड़े पुसद महाराष्ट्र से हैं और रविकांत हजारीबाग झारखंड से हैं। तो निशा, सूर्यकांत, राजकुमार, हिरपारा, नीलम, प्रियंका और रविकांत, आप सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, सच यह है कि मैं अब आप सबका स्वागत केवल अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से ही नहीं करता हूं, बल्कि अपने उन नौजवान साथियों की ओर से भी कर रहा हूं जो फरवरी में यहां आएंगे और जिनकी मुलाकात आप सबसे होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्वागत क्रम के बाद में आपको मुझे 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं देनी है जो आप लोगों के मेल पर ही आधारित हैं। पहली तो सूचना यह है फ्रेंड्स कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को भेज दिया गया है। इस बार के स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का सब्जेक्ट रखा गया है जीवन बीमा निगम में जो सरकार ने FDI की जो लेवल है, दर है, वो बढ़ाकर 49% तक कर दी है, उसको लेकर के वो ऑडियो तैयार किया गया है। लेकिन उसमें जो हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है उसका सिनेरियो दिया गया है। तो ये आप सब अपने अपने मेल पर एक्सेस कर लेंगे। दूसरी खबर ये है मित्रों कि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर आ रहे हैं जो फरवरी की क्लास के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है कि हम स्टूडेंट्स जो भी अपना मोबाइल नंबर अपने दूसरे साथियों को देना चाहते हैं उनको अनाउंस करते हैं ताकि उस एरिया के स्टूडेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। और इसके पीछे हम लोगों का मकसद ये होता है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं बेहतर होगा यदि उसमें से कुछ लोगों के ग्रुप बन सकें, वे अपने अपने ग्रुप बनाएं, आपस में डिस्कस करें। और स्वाभाविक है कि ऐसे ग्रुप यदि आसपास के स्टूडेंट होते हैं तो ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो मैं स्पेशली ये बताना चाहूंगा कि अभी जो हम अनाउंस कर रहे हैं वे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नंबर कर रहे हैं जो अक्टूबर की क्लासेस में आ रहे हैं। उसका कारण है फरवरी की हम नहीं कर रहे क्योंकि अभी फरवरी के क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स आने हैं। तो यदि किसी का नंबर अभी अनाउंस भी कर दिया गया तो उसे सुनने वाले बहुत थोड़े से स्टूडेंट होंगे और बाद में आने वाले स्टूडेंट्स को वो नंबर पता नहीं चल सकेगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो फरवरी में आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अनाउंसमेंट के लिए अपना नंबर उस समय भेजें जब अक्टूबर की क्लासेस खत्म हो चुकी हों और तब तक काफी बड़ी संख्या में फरवरी के बैच के स्टूडेंट भी दाखिला ले चुके होंगे। तीसरी सूचना यह है फ्रेंड्स कि मैंने हनुमान चालीसा पर लिखी अपनी किताब की चर्चा की थी, जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा, ये किताब का टाइटल है। कि ये किताब कहां से मिलेगी तो मैं फिलहाल केवल ये बताना चाहूंगा कि ये किताब मार्केट में सभी बड़े शहरों में अवेलेबल है, किताबों की दुकानों पर भी अवेलेबल है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और यदि वहां नहीं भी मिलती है तो फ्लिपकार्ट पर और अमेजॉन, इन दोनों पर ऑनलाइन तो ये किताबें अवेलेबल हैं ही, आप इन किताबों को वहां से मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो मोटिवेशन का स्टेज है। फ्रेंड्स, इस पर हम लोग बहुत विस्तार के साथ एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है लेने और देने से संबंधित, यानी कि कोई कैसे लेता है, ज्यादातर इसी पर है क्योंकि आप सबको अभी मैं फिलहाल एक रिसीवर के रूप में देख रहा हूं। आप सब लेने वाले की भूमिका में है, ये बात अलग है कि जो एक समय में लेने वाले की भूमिका में होता है ठीक उसी पर्टिकुलर समय में वो किसी को देने वाले की भूमिका में भी होता है। लेकिन चूंकि आपके लिए अभी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से बातें आपसे कह रहा हूं। और इसी के कंटिन्यूएशन में फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि लेने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वो जो देने वाला सामने जो खड़ा है, जो दे रहा है, उसके मन में ये विश्वास पैदा कर पाता है कि वह बहुत विश्वसनीय है, वह योग्य है और लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से गंभीर है। वहां उस समय मैंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो लेने वाले की होती है, खासकर ये लेने और देने की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। लेकिन मित्रों, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है। चूंकि आप अभी लेने वाले की भूमिका में हैं, इसलिए निश्चित रूप से अभी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो आपकी है। और वैसे भी अगर सच मानिए तो लेने वाले की जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसको ज्यादा गरज है, अगर हम बड़े ठेठ शब्दों में बात करना चाहें तो। क्योंकि लेने वाले के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उन चीजों को ले, क्योंकि उसके साथ उसका कैरियर, उसका जीवन, जो भी आप कह लीजिए, वो जुड़ा हुआ है। देने वाले के साथ शायद वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं जुड़ी होती, इसलिए देने वाला हो सकता है कि देने के मामले में थोड़ा सा कमजोर भी पड़ जाए, लेकिन लेने वाले को किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है। इसलिए मैंने लेने वाले की भूमिका ज्यादा बड़ी बताई थी। लेकिन मित्रों, किसी भी मायने में देने वाले की भूमिका को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। चूंकि आप लोग लेने वाले हैं और इसी के समानांतर देने वाले की भूमिका में भी आप कहीं ना कहीं होंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं, अपने जूनियर आपके जो भाई बहन हैं उनको पढ़ा रहे होंगे, आप नौकरी भी कर रहे होंगे, कॉलेज में हो सकता है, स्कूलों में हो सकता है, आप टीचिंग का ही कई प्रोफेशन में हो, तो ऐसे समय में आप देने वाले की भूमिका में हो जाते हैं। और ये बहुत अद्भुत काम है। मैं केवल ज्ञान के क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूं मित्रों, ये तो जीवन के हर क्षण में या तो हम ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, दो में से कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़े से विस्तार से भी इस पर बात कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसको बहुत ध्यान से सुने और इस्तेमाल भी करें। मित्रों, अब मैं देने वाले की पात्रता के ऊपर आज बात करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि अंततः आप देने वाले भी हैं, और जब आप परीक्षा हॉल में होंगे तब तो आप देने वाले ही होंगे, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने होंगे तब भी आप देने वाले ही होंगे। तो इस तथ्य को भी बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे आप सब एकेडमी की क्लासेस में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अक्टूबर में आ रहे हैं, फिर फरवरी में आ रहे हैं, और चलिए अगर क्लास में नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लेने वाले हैं, राइट। और चाहे क्लास की बात लूं या इस ऑडियो की मैं बात लूं, तो मैं अपने को देने वाले की भूमिका में रखता हूं, मैं देने वाला हूं। अब सवाल यह है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है कि कैसे मैं आपके मन में इस बात के प्रति बहुत ठोस, बहुत दृढ़ विश्वास भर सकूं, बड़ा पुख्ता बना सकूं आपके भरोसे को कि यहां आपको चीजें मिलेंगी। ये बहुत बड़ी शर्त होती है और बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। ये बात अलग है कि हम बहुत सी ऐसी जगहों पर भी जाते हैं, हम ट्राई के लिए जाते हैं, ट्रायल एंड एरर्स में हमारा विश्वास रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये विश्वास नहीं दिला सकता, तो हम जाते हैं। और जब हमें वहां से निराशा होती है तो हम अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, और यदि हमें उम्मीद लगती है तो वहां उसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो मित्रों, मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस ऑडियो के माध्यम से मैं इस ऑडियो के प्रति आपके मन में कैसे विश्वास पैदा कर सकता हूं, अभी इस ऑडियो के माध्यम से या जब आप क्लास में आएंगे तब उस क्लास के बारे में आपके मन में कैसे विश्वास पैदा कर सकता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, दूसरों को भी आश्चर्य होता है जब वो सुनते हैं और देखते हैं कि इतनी बड़ी क्लास 15 दिन तक डेली 6-6.5 घंटे की कंटिन्यू होती है, बीच में केवल लंच ब्रेक होता है, 15-15 मिनट के हर क्लास के बारे में छोटे से ब्रेक होते हैं और 15 मिनट का टी ब्रेक होता है, और लगातार स्टूडेंट बैठे रहते हैं और देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल,
कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सब बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। यहां तक कि अगर किसी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत भी पड़ती है तो उसको लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं, हम क्लास मिस नहीं करेंगे। तो ये जो भरोसा है, ये भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी सच पूछिए तो मैं अपने ऊपर लेता हूं, ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैं इस भरोसे को आपके अंदर कैसे भर पाता हूं, डेफिनेटली उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। उसमें एक भौतिक जगत की चीजों से लेकर के क्वांटम फिजिक्स तक की चीजें काम करती हैं, बहुत सी चीजें हैं। आप ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से अनुमान लगाते हैं कि वहां पढ़ाई अच्छी हो सकेगी, तो इस ऑडियो में जो आपको कंटेंट मिलता है शायद उससे आपको भरोसा होता हो, जो वॉइस है, जो आवाज होती है उससे आपको भरोसा होता हो, इसकी जो कंटिन्यूटी है, जो क्रेडिबिलिटी है शायद उससे आपको भरोसा होता हो, मेरा अपना जो बैकग्राउंड है उससे शायद आपको भरोसा होता हो, इन सबको मिला देने से शायद आपको भरोसा होता हो, या और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनको मिलाने के बाद आपको यह विश्वास होता हो कि नहीं, वहां जाना चाहिए, नहीं इस ऑडियो को सुनना चाहिए, और यह ऑडियो आपको कुछ न कुछ विशेष रूप से देगा ही। तो फ्रेंड्स, नो डाउट मैं पूरी जिम्मेदारी लेने वाले की नहीं मानता, देने वाले पर भी उतना ही दायित्व इस बात का होता है कि वो सामने वाले के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सके। दोस्तों, अगर आप पूरी की दुनिया का क्रम देखिए तो इसी आधार पर चलता है। जैसे अगर हम अभी की कुछ घटनाओं को लें, अच्छा चलिए, 3 साल पहले जब अन्ना हजारे जी ने दिल्ली में आकर के और लोकपाल के पक्ष में इतना बड़ा आंदोलन किया था जो बाद में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, पूरे देश में वो आंदोलन फैल गया, तो क्यों, अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता तो शायद वैसा नहीं होता, क्योंकि अन्ना हजारे जी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया, तो पात्रता सिद्ध की अपनी और उससे लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। ठीक चुनाव का देख लीजिए, लोकसभा चुनाव पिछले बार हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों के मन में कुछ न कुछ विश्वास पैदा किया कि नहीं, आर्थिक विकास होगा देश का और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, चीजें साफ सुथरी होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, लोगों के मन में विश्वास पैदा किया। और ये विश्वास पैदा किया उन्होंने अपने गुजरात के कार्यकाल को दिखाते हुए, एक एग्जाम्पल भी वहां सेट किया। अब आगे क्या होता है वो बात अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब घटनाएं घटती हैं तब उसके केंद्र में हमेशा एक विश्वास ही होता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी आप देख लीजिए, गजेंद्र सिंह जी को वहां का डायरेक्टर बनाया गया है, वहां के स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक मामला है और फलाना फलाना स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते हैं, सही भी होगा गलत भी होगा दोनों होगा वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप इसको मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो आप पाएंगे कि स्टूडेंट्स के मन में उनके प्रति ये विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है कि ये ऐसे पात्र हैं जो हमें यहां कुछ दे सकेंगे। स्टूडेंट्स का तो यही कहना है कि उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर कल्पना कीजिए, अगर हम इसको राजनीतिक नेतृत्व की ही बात मानते हैं, जैसे अनुपम खेर जी को ले लीजिए, चलिए हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, इसका राजनीतिक निर्णयों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अभी की घटना है जिसको आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। अनुपम खेर जी किस पार्टी को बिलोंग करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम मान लेते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो चंडीगढ़ से चुनाव जीती, उस एरिया से जीतकर आई है और भारतीय जनता पार्टी से है, तो कहीं ना कहीं शायद उनका इसी राजनीतिक पार्टी से लगाव होगा। अगर कल्पना करके देखिए कि गजेंद्र सिंह की जगह अनुपम खेर जी को उसका डायरेक्टर बना दिया गया होता, तो हो सकता है कि वो भी इसी विचारधारा के होते जो गजेंद्र सिंह जी के, लेकिन लोग स्टूडेंट्स का विरोध उतना नहीं होता, होता ही नहीं, क्योंकि उनको लगता कि नहीं ये बहुत योग्य पात्र हैं, यानी कि उनका नाम, अनुपम खेर का नाम स्टूडेंट्स में जो लेने वाले हैं उनके मन में एक विश्वास पैदा कर देता, और ऐसी स्थिति में एक वेवलेंथ बन जाती, स्टेब्लिश हो जाती, दोनों के रिसीवर्स बेहतर हो जाते और लेने और देने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से शुरू हो जाती। तो मित्रों, इसे मैं और आगे बढ़ाऊंगा और कल मैं आपको इसे आपके पढ़ने के सिद्धांत से जोड़कर बताऊंगा कि आप इसी सिद्धांत को, ये तो मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, जब दो व्यक्ति जीवित आमने सामने, लेने वाला भी और देने वाला भी, लेकिन तब क्या होगा जब लेने वाला तो जीवित व्यक्ति है लेकिन देने वाली एक किताब है, एक कॉपी है, एक साउंड है, तब क्या होगा, तब हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक फिर आपके इसमें जो पढ़ाई है, जो सिविल सर्विस की तैयारी है, उसमें बेहतर तरीके से काम करेगी। तो मित्रों, इस सेक्शन में इतना ही। अब मैं आता हूं आज के कल के AIR न्यूज के ऊपर। मित्रों, कल के न्यूज में जो बातें हैं वो सारी छोटी छोटी हैं, किसी भी न्यूज का बहुत विस्तार से डिटेल से वर्णन नहीं है, और बहुत सी तो ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम लोग बातें भी करते आ रहे हैं। एक बात के लिए मैं माफी चाहूंगा कि आज आपको खट खट ढाए ढाए इस तरह की कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, वो चारों तरफ के डिस्टर्बेंस है। मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल बंद कमरे में जाकर के और इसकी रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे भी वो डिस्टर्ब कर रहा है जबकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं फिर भी। लेकिन चलिए, कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको बियर करेंगे। फ्रेंड्स, संसद में जो गतिरोध है उसके बारे में आप लगातार न्यूज सुन ही रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि संसद का ये गतिरोध टूटे और संसद में जो बहुत महत्वपूर्ण कामकाज हैं उसकी शुरुआत हो, और वो जो संसद जो सही मायने में राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने का केंद्र है वो कार्य हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि ये स्थिति कब तक बनती है और किस तरीके से यह गतिरोध टूटता है। आप देख रहे हैं कि जो डिमांड की जा रही है वो तीन लोगों के इस्तीफे की मांग को लेकर के की जा रही है, जिसमें एक राजस्थान के मुख्यमंत्री और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, दूसरा हमारे जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का इस्तीफा। कारण आप लोगों को मालूम है मित्रों, इसमें खासकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं व्यापम मामले को लेकर के, और व्यापम मामले को लेकर के आज कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल आपके नॉलेज सेंटर में भी प्रोवाइड होगा और बाद के सेक्शन में, न्यूज सेक्शन में, मैं इस पर आपसे अलग से बात करूंगा। मित्रों, जो दूसरी खबर थी, मैं समझता हूं कि जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबर थी वो थी कि नेपाल, जो भारत का पड़ोसी देश है और बहुत महत्वपूर्ण देश है, चूंकि हम सिविल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि पिछले दो सालों में सिविल सर्विस में जो इंटरनेशनल अफेयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पड़ोसी देशों से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा होते हैं, और नेपाल तो बिल्कुल ही पड़ोसी देश है, तो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देश ही नहीं है बल्कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो जो खबर है न्यूज में इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की जो चार पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अब इस बात पर एग्री कर गई हैं कि पूरे के पूरे देश को छह प्रांतों में विभाजित किया जाए, मतलब छह राज्य बना दिए जाएं। एक बड़ी खबर है क्योंकि इस तरह से सहमति हो पाना नेपाल में शांति स्थापित करेगा और उसके आर्थिक विकास को गति भी देगा, जिसमें भारत जैसे देश का बहुत बड़ा रोल होता ही है। इससे भी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इसके जितने भी छह प्रांत होंगे उनकी सीमाएं भारत से मिलेंगी, सभी की छह के छह राज्यों की जो सीमाएं होंगी वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श करती रहेंगी। ये जनरल स्टडीज की एक बड़ी खबर है, बड़ी नॉलेज है। नॉलेज इस मायने में कि भारत का ऐसा कौन से राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसके सभी राज्य भारत की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और वो है नेपाल। राइट फ्रेंड्स, तीसरी जो खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बल्कि खबरों के कंटिन्यूएशन में ही है, वो खासकर नागालैंड समझौते को लेकर है। मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं कि नागालैंड के समझौते को लेकर के इस बीच में एडिटोरियल्स भी आए हैं और कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, लेकिन सही मायने में अभी जितने भी एडिटोरियल और आर्टिकल्स आए हैं उन्हें आप अपने लिए सफिशियंट ना माने। सफिशियंट इसलिए नहीं मानने की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है, नागालैंड काउंसिल और इधर भारत सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है, अभी तक उस समझौते के बिंदु हमें नहीं मालूम है। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम उन चीजों को डिस्क्लोज करेंगे, तो इसीलिए जब तक उसके बिंदु नहीं आ जाते तब तक हमारे पास कहने के लिए कुछ कंटेंट नहीं है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति की स्थापना होगी, अलगाववादी भावनाएं कमजोर पड़ेंगी, ये सब हम कह सकते हैं, लेकिन उसका आना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच में आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के डिबेट शुरू हो गई है। जैसे विपक्ष पार्टी के रूप में कांग्रेस ने यह कहा कि जब नागालैंड से समझौता किया गया तो दूसरे चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में सलाह नहीं ली गई, इसके बारे में बातचीत नहीं की गई, कि दूसरे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए थी। और ठीक है, जिस तरह का संघवाद है, जिस तरह की समस्या है, की जानी चाहिए थी। उस पर फिर सरकार ने उत्तर दिया कि उनको इन्वाइट किया गया था लेकिन वे नहीं आए। अब सरकार कह रही कि उनसे बातचीत भी होगी। तो ये इस तरह के अब डिबेट शुरू हो गए हैं। आज का अगर अखबार आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आरटीआई के अंतर्गत भी नागालैंड के साथ जो समझौता हुआ है उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं कि बताई जाए कि डिटेल्स क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ न्यूज में आपने ये भी सुना है कि नागालैंड के सीएम ने कहा है कि ये जो समझौता हुआ है ये बहुत ही राष्ट्रीय हित में है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है, वो है कि जो नागालैंड की जो स्वायत्तता की मांग उसके अनुरूप है। मतलब नागालैंड का अगर एक ग्रुप या जिस तरह से भी नागालैंड ने जो ऑटोनोमी मांगी होगी वो ऑटोनोमी उसी पैटर्न पर है जो किसी भी एक देश के किसी भी एक छोटे से समूह को उस तरह की स्वायत्तता दी जाती है। इस तरह की स्वायत्तता दी गई है। गोरखालैंड का जब आंदोलन हुआ था वेस्ट बंगाल में तो उनका एक परिषद बनाया गया। असम गण असम में जब इस तरह के आंदोलन हुए थे तो वहां भी उस तरीके के स्वायत्त परिषद स्थापित किए गए। तो ये एक बड़ी बात इस मायने में यह है कि इससे हमारे देश की एकता और अखंडता पर जरा भी आंच नहीं आ रही है। जो कुछ भी किया गया है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत किया गया है, इसीलिए इस पर किसी तरह के संदेह किए जाने की गुंजाइश नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मित्रों, एक जो छोटी सी खबर है वो चीन में तूफान आ रहा है, आया हुआ है, जिसके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसको अब इस साल का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान माना गया है। कोयलान इसका नाम है, वो आप नाम लो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, दो चार दिन याद करते रहिएगा ताकि पता लग जाए कि हाँ इस तरह का जो नाम होता है वो तूफान से जुड़ा हुआ नाम है और ये चीन में आया था। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्री में ये जो सूचना है आपकी मदद करेगी। और इस तरह की देखिए जो मैं बातें बता रहा हूं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिविल सर्विस में ही मदद करें, ये आपके जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होंगे उनमें भी उतनी ही मदद करेगी। तो आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और आखिरी जो छोटी सी खबर थी मित्रों, वो थी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पूरे देश में काफी सक्रिय हो गया है और हिमाचल में काफी उसकी वजह से वर्षा हो रही है। यहां आपको ध्यान में रखने की बात केवल यह है कि आप देखें नक्शे में, आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ ईस्ट मानसून कहां से चलता है, बिल्कुल आप साउथ ईस्ट, और चलते 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 वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है। मतलब ऑलमोस्ट उसने पूरा का पूरा देश क्रॉस किया है। आप देख रहे हैं ना, साउथ वेस्ट से चल करके अब वो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ तक पहुंच गया है, ऊपरी हिस्से तक, हिमालय के करीब पहुंच गया है। आपको बस यहां थोड़ी सी बस ये जानकारी रखनी होगी कि जो उत्तर भारत में चूंकि हिमालय की मौजूदगी है इसीलिए उधर से कोई ऐसी वर्षा वाली हवाएं नहीं आती, और वैसे भी उधर तो ठंडा प्रदेश है तो वहां से वर्षा वाली हवाओं के आने का कोई बहुत बड़ा प्रश्न भी नहीं उठता है। तो ये एक ज्योग्राफी की एक बेसिक समझ होने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से फिर इसका उत्तर दे लेते हैं। तो मित्रों, एक छोटी सी खबर और थी जो पब्लिक स्पीक का विषय है, वो मनरेगा में जो मजदूरी के भुगतान का जो सिस्टम शुरू करने की बात हो रही है उस पर पब्लिक स्पीक का विषय था, विषय है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे भी सुने। इससे आपको जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे देश की जो पॉलिसीज हैं उस पर बहुत अच्छी पकड़ होती जाएगी और ये आपके मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के बहुत अच्छे उत्तर देने में आपकी बेहद मदद करेगी। मित्रों, तो AIR न्यूज से बस इतनी ही बातें हैं। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर के ऊपर। फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर पर काफी न्यूज़पेपर्स के आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें प्रदूषण के ऊपर भी है, खासकर प्रदूषण के हेल्थ को लेकर के, स्वच्छता अभियान के ऊपर है। स्वच्छता अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर आपकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। टैक्स ग्लोबलाइजेशन पर इकोनॉमिक टाइम्स का है दोस्तों, इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और खासकर एक अच्छा आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड में कि बुनियादी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं उनको लेकर के एक अच्छा आर्टिकल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहां मैं जिस आर्टिकल की थोड़ी सी आपसे डिटेल में बात करना चाह रहा हूं, खासकर वक्त को देखते हुए, वो है कपिल सिब्बल जी का लिखा हुआ व्यापम पर आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मित्र देखिए कि व्यापम एक करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी जांच हो रही है, रिक्रूटमेंट सिस्टम में किस तरह से करप्शन हुआ, इन सब को लेकर के वो सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन है चल रहा है। व्यापकम व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है ये मध्य प्रदेश की एक संस्था है जो खासकर कुछ परीक्षाएं लेती है, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी करती है, पीएससी वाले नहीं, जैसे आपके पुलिस में भर्ती इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करती है, साथ में ही वो डॉक्टरों पीएमटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी वो कुछ काम करती है जिससे लोग डॉक्टर बनते हैं। क्या घपला था, क्या था, इसके बारे में आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, बहुत लोग जेल में हैं, पॉलिटिकल लीडर भी जेल में हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी जेल में हैं, दूसरे लोग भी जेल में, स्टूडेंट भी जेल में, डॉक्टर्स भी जेल, इस तरह से ढेर सारे वो सारे संकट चल रहे हैं। मित्रों इसको लेकर के कपिल सिब्बल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस की दृष्टि से वो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए व्यापम एक घटना है, दुर्घटना है, जो कुछ भी आप कह लीजिए, राइट, लेकिन सिविल सर्विस में व्यापम पर इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इन्होंने जो प्रश्न उठाया है और बड़ा वैलिड प्रश्न है वो ये है कि जो व्यापम है वो एक इंस्टीट्यूशन है ना, सरकार की एक संस्था है। देखिए जब हम संस्था की बात करते हैं तो दो तरह की संस्थाएं होती, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक, सरकार पब्लिक है, तो व्यापम एक सरकारी संस्था है। प्राइवेट संस्थाओं में घपले होते रहे उसके लिए अपना प्रोविजन है, लेकिन देश उसके बारे में उतना चिंतित नहीं होगा जितना सरकारी संस्थाओं के बारे में चिंतित होगा, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, प्राइवेट का उतना बड़ा नहीं होता, वो एक छोटे से दायरे तक सीमित होगा। इसीलिए आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि प्राइवेट संस्था का कोई एक व्यक्ति अगर घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो न्यूज में नहीं छपेगी, वो अखबारों में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक सरकारी छोटा सा भी अफसर, पटवारी जैसा अफसर भी अगर घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो अखबार में छप जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंपैक्ट गहरा है। तो जो व्यापम को इन्होंने एक डेमोक्रेसी में जो एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है उस रूप में उन्होंने लिया है। पहली बात, इंस्टीट्यूशंस का पतन सबसे खतरनाक बात होती है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका चुनाव का सुधार आयोग हो जाए, चाहे आपकी जुडिशरी हो जाए, चाहे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, अगर वो पब्लिक हैं तो सबसे खतरनाक बात होती है। मतलब आप कह लीजिए कि आपने गंगा की का जो उद्गम स्थल है गोमुख, उसी को ही गंदा कर दिया है, तो वहां से ही जब गंगा वैसी निकल रही है तो फिर तो उसकी सफाई होना बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि व्यापम में जो इशारा कांड हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विरोध ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए रीजंस जो है थोड़े से हमें उन्हें भी अलग तरीके से उसकी तलाश करनी चाहिए। जैसे हमारे पास डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन सप्लाई हम बहुत कम कर पा रहे हैं। सप्लाई कम कर पा रहे इसका मतलब यह हो कि हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ही बहुत कम है जो हम मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। चूंकि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कम हैं, ऐसी स्थिति में कंपटीशन यंग जनरेशन के बीच में बहुत ज्यादा है, और जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तब फिर इस तरह के करप्शन के लिए रास्ते खुलते हैं। फिर आप एक क्रोनी कैपिटलिज्म का पैटर्न देख रहे हैं, जो पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, उसमें इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। उसमें कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब करप्शन किया जाएगा तो करप्शन करने वाला कौन होगा? मान लीजिए कि एक धनी व्यक्ति है और उसका बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि अब इसको खरीदो, पैसा लगाओ। और जब पैसे की बात आती है तो ये पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सूट करता है, तो नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे ऐसी संस्थाओं का पतन इन तीनों की साठ गांठ से होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए दुनिया भर के फिर रास्ते निकाले जाने लगते हैं। जैसे कि व्यापम में दुनिया भर के रास्ते निकाले गए, उन्होंने कुछ चर्चा भी की है कि किस किस तरीके के रास्ते अपनाए गए। तो हम उन रास्तों पर नहीं जा रहे हैं। तो हमारे लिए क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक जो विभत्स रूप जो हो सकता है वो यहां दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने दोस्तों दो तीन बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं। ये नॉलेज सेंटर में आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सब इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, तब आपकी समझ में ये बात आएगी कि कैसे किसी घटना को एनलार्ज करके या फिलोसफिकल तरीके से देखा जा सकता है। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों की चर्चा करना चाहूंगा, जैसे एक नीतीश कुमार का बेगूसराय से, बिहार से मेल है, जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, जो एफआईएस क्लब के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश, बहुत बहुत प्रशंसा, धन्यवाद, और ईश्वर करे कि इसको खूब आगे बढ़ाते रहो। इसी तरह का एक मेल हरिओम तिवारी का है, जो इलाहाबाद से है। वो 150 स्टूडेंट्स उन्होंने इकट्ठे किए और फिर उनको एएफई क्लब के बारे में बताया, ऑडियो के बारे में बताया, और उनसे वो लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हरिओम तिवारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रशंसा और ईश्वर से प्रार्थना भी हरिओम और नीतीश दोनों के लिए कि वो बहुत आगे इसी तरह से बढ़ें। मित्रों, एक मेल है तनुप्रिया का। तनुप्रिया, आपका मेल आया और बहुत प्यारा मेल आपने लिखा है, और जो भी बातें आपने लिखी हैं वो बहुत पवित्र, बहुत रोमांचक और बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स को लेकर के लिखी गई बातें हैं। और बस मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन पर पूरा यकीन रखें, और जिस तरह से घटनाक्रमों को आपने एक दूसरे से जोड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें तनिक भी संदेह न करें। और यदि आप चाहती हैं कि आपके इस घटनाक्रम का को मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, मैं उन्हें बताऊं, तो आप मुझे अगर अनुमति देंगी तो फिर मैं आपके उस मेल को स्टूडेंट के सामने रखूंगा। लेकिन चूंकि वो आपका एक आपकी एक निजी भावना है, निजी घटना है, जो बड़े महान तरीके से जो घटित हुई है और ऐसा होता भी है, तो बिना आपकी अनुमति के मैं उसे लोगों के सामने नहीं रखना चाहूंगा। अगर लेकिन अगर आप चाहती हैं कि दूसरे लोग भी इसके बारे में जानें, इस पर यकीन करें, तो आप मुझे बता दें, मैं फिर स्टूडेंट्स के सामने इसकी चर्चा करूंगा। हाँ, ईश्वर इसी तरह से आपको शक्ति देता रहे और आपको विवेक देता रहे, बस यही मैं प्रार्थना करता हूं। और आप इस तरह के जो इंडिकेशंस होते हैं जीवन के, उनको पकड़ती रहें, और जीवन के जो संकेत होते हैं और हमारी इच्छा की जो प्रबलता होती है, इन दोनों के अंतर को हमेशा पहचानती रहें। मित्रों, अब मैं अंत में धन्यवाद देता हूं उन सभी अपने दोस्तों को जिन्होंने मेल लिखे हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं: उपेंद्र गौतम बालाघाट मध्य प्रदेश से, मयंक जोध मंडला मध्य प्रदेश से, सिकंदर राजकोट से, शिवम त्रिपाठी उरई उत्तर प्रदेश से, प्रदीप कुमार कैथल हरियाणा से, सुरेंद्र सलोनिया पानीपत से, अभिनव शर्मा नई दिल्ली से, संदीप कुमार लखनऊ से, और गौरव धीमान चंडीगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब मैं अपने इस आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।